सोमवार के व्रत के नियम। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है। व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है। भोजन केवल एक ही बार किया जाता है तथा व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत तीन प्रकार का है, तीनों की अलग अलग कथा है। साधारण, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार। नियम तीनों व्रतों के एक ही हैं। तीसरे पहर शिव पूजन करके कथा कह सुनकर भोजन करना चाहिए। साधारण व्रत की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन धाम की कोई कमी ना थी, किंतु फिर भी वो दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं, और एक दिन सुअवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, ये नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी कामना पूर्ण कीजिए। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने के लिए तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूं, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर का संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को एक सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर खुशियां मनाई गईं, नगर सेठ को बधाइयां दी गईं, किंतु नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल बलि इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पूर्ववत ही जारी रखा। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो वो पूर्ण युवा जैसा दिखने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वो पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करें, और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करें। मामा भांजे काशी को रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वो काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था, और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता चला तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए विश्वास दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए तैयार हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, और मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूं और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूं। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसने उसे पढ़ा, और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का क्रम जारी रखा। जिस दिन वो लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञादि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए जब उसे लेने के लिए आया तो उस लड़के को मरा हुआ देखकर उसने अपनी छाती पीट ली। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया, और उसके बाद उसने जो रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी और भगवान शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वो करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे इस बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। भगवान शंकर को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता पुत्र पुनः जीवित हो गया। फिर मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर को लौट गए। रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते, दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था, तो ससुर ने लड़के को एकदम पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे वो राजमहल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का पुत्र पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को तो विश्वास ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे वहां से तभी उतरेंगे जबकि लड़का स्वयं उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर वो आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। वहां जाकर मां बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधु को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ, अतः सबने मिलकर उत्सव मनाया।